नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है, धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा, स्वतंत्र आसमान है, इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, इसके जय पताक पे लिखा विजय निशान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्म भूमिश स्वर्गादपि गरियसी। रामायण में दिखाया जब श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं तो क्या कहा, जननी जन्म भूमिश स्वर्गादपि गरियसी। यदि मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, अपनी जन्मभूमि की ओर, भारत की ओर। तो यज्ञ इतिहास के इस श्रृंखला, इस भट्टी में आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमने 5 कालखंड में यज्ञ को विभाजित किया था, 36 से लेकर तो 50 तक फाउंडेशन ईयर्स, जहां पर फाउंडेशन हो रहा है, नींव डाली जा रही है। 51 से लेके 59 ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है इसको, बीच का एक अंतराल 60 से लेकर 69 कंसोलिडेशन पीरियड, जहां पर मजबूती हो रही है, शक्ति बन रही है। 70 से लेके तो 2007 तक पीरियड ऑफ एक्सपांशन, विस्तार हुआ, जहां एक के बाद एक, एक के बाद एक विस्तार होता गया होता गया होता गया। 74 में विदेश की सेवा चालू हुई, 83 में ओम शांति भवन बना, 83 में कॉन्फ्रेंस हुई, 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, 88 में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, करते 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 91 ग्लोबल हॉस्पिटल, 95 ज्ञान सरोवर, 96 शांतिवन, 2010 सोलर, वो विस्तार का पीरियड है। 2007 तक, 2007 से अब तक के पीरियड को कहा जाता है द शिफ्ट। तो यज्ञ का इतिहास 5 कालखंडों में विभाजित है। अब तक हम थे 39 से तो 50 के बीच में कराची में। इस पीरियड में ढेर सारी घटनाएं हुई और जो हमने विस्तार से देखी, कम से कम 10-15 ऐसी अलग अलग घटनाएं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विभाजन हो चुका था 47, परंतु फिर भी यज्ञ वही रहा। विभाजन हुआ और हमने ये भी देखा कि कैसे राइट्स हुए, एंटी हिंदू राइट्स इन कराची, और हलचल चालू ही थी। विश्व युद्ध 45 में पूरा हो चुका है, 2 सितंबर, जब जापान ने ऑफिशियल सरेंडर कर दिया। तो 45 का ये कालखंड, अब हम इस कालखंड में आते हैं, 45 और 50 के बीच क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर एक तरफ तो ज्ञान है जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। 47 में बहुत सारे सिंधी भारत की तरफ चल पड़े, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह पर। सब ने कहा कि आप सब भी भारत शिफ्ट हो जाओ, पर वो लोग शिफ्ट नहीं हुए, वहीं रहे लगभग 3 साल तक। और हमने ये भी देखा पूरा एक दिन, चैप्टर्स ऑन पिक्चर्स, कैसे पिक्चर बने, सबसे पहला कौन सा पिक्चर बना, प्रिंट कब हुआ, तो वो सब इसी कालखंड में बन रहा है। इन्फिनिट डिवाइन लाइट लिखा जा रहा है पिक्चर में। प्यू की पदरामनी हुई, उसने बताया ये है ब्रह्मा, तब था नाम प्रजापति, अभी तक प्रजापिता नहीं हुआ है। 45-43 के बीच 1950, लगभग जनवरी 1950, यहाँ पर कुछ बातें हुई कि जिसके वजह से फिर ये निर्णय लिया गया कि अभी भारत हमें चलना है। भारत आने के कम से कम 7 से 8 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मनमोहिनी दीदी थे और यज्ञ के बहुत सारे वत्स थे और जो इनके रिश्तेदार भारत आ चुके थे, उन्होंने ये सोचा कि ओम मंडली अभी तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी कोई खबर ही नहीं। क्योंकि भारत विभाजन एक ऐसी घटना थी कि जिसमें बहुत हलचल हुई, वो पूरा उस दिन हमने देखा कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुए, क्या क्या विकर्म हुए, दुष्कर्म हुए, उस दिन विस्तार से देखा। तो वो सारे लोग भारत आ चुके हैं, पर ये लोग भारत में नहीं आए, तो उनको लगा कि ये ओम मंडली खत्म हो चुकी है। परंतु बाद में पता चला कि वो लोग हैं, वो नष्ट नहीं हुए, वो संस्था अभी भी चल रही है वहाँ पे, और लो प्रोफाइल, क्योंकि मिनिस्टर्स ने क्या कहा था, नाम बदल दो, लो प्रोफाइल रखो, क्योंकि ट्रिब्यूनल बनी थी अगेंस्ट। 9-8 बंगले थे वो 8 बंगलों में क्लिफ्टन के पास ये सब लोग रह रहे हैं, चुपचाप, उनकी संसार की निगाहों से दूर, संसार के आवाज़ से दूर, उन 8 बंगलों में जैसे कैद है, वहीं उनकी दिनचर्या। और दिनचर्या भी एक दिन हमने देखी क्या क्या करते थे सारे दिन भर। तो ये जो रिश्तेदार थे जो भारत में आ चुके थे, उनको जब ये पता चला कि ये सब जिंदा है और ये संस्था अभी भी है, तो उन्होंने फिर निमंत्रण भेजे कि आप अब यहाँ आ जाओ। उनको डर था कहीं मुस्लिम लोग इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए, पर फैक्ट कुछ और था। वहाँ के जो मुस्लिम थे वो भी बड़े सहयोगी थे, उनको तो बहुत अच्छा लगता था इनको सबको देखकर। भले हमने ये भी देखा कि वो एरिया कौन सा था, मुस्लिम एरिया था, इसलिए क्लिफ्टन को इसलिए भी चुना गया था कि वो मुस्लिम एरिया था, क्योंकि जो हिंदू एरिया थे वहाँ के हिंदू सारे भारत आ चुके थे, पर ये एरिया ही मुस्लिम था तो, और इन्होंने फोर्स भी नहीं किया, इनका प्रेम पूर्ण व्यवहार था, इसके लिए ये फोर्स भी नहीं था कि जाना है, इसलिए वहीं रुके 3 साल। तो ऐसे 7-8 कारण बने। सबसे पहला कारण था ये जो रिश्तेदार थे इन्होंने निमंत्रण भेजे कि आओ वापस, आप लोग भारत आ जाओ। पर इसके पीछे और एक दूसरा भी रास्ता चाल थी, एक षड्यंत्र था भारत बुलाने का। उन्होंने कहा आप यहां आओ, आपकी सारी देखभाल हम लोग करेंगे, सारा फाइनेंस सारा पैसा हम लगाएंगे। और ये चाल ये थी कि जब ये लोग यहां आ जाएंगे तब मुकर जाएंगे, ताकि ये संस्था खत्म हो जाए और हमारी जो बेटियां और हमारी जो माताएं हैं वो वापस हमारे पास आ जाए। षड्यंत्र बहुत गहरा था। तो ये भी इच्छा थी लोग सबकी नहीं कुछ की। तो पत्र आए, तो सबसे पहला कारण था इन्विटेशंस फ्रॉम रिलेटिव्स, भारत में आने का सबसे पहला कारण इन्विटेशन। जब भी इन्विटेशन मिलो तो सोचना तो मनमोहिनी दीदी को उन्होंने फ्लाइट की टिकट्स भेजी, उसके रिश्तेदार बहुत अमीर थे, कि आप आओ, और वो मुंबई आए बाय फ्लाइट। यहाँ 2 मास रहे, उनको 2 अलग से कमरे दिए गए, उन्होंने कहा हम अपना भोजन बनाएंगे, उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, आप ये खाओ वो खाओ, पर उनको उनका रहन सहन उनका खान पान इतना शुद्ध था। और वहाँ 2 मास सेवा हुई, क्योंकि जो रिश्तेदारों ने जिन्होंने बुलाया था वो काफ़ी अच्छे थे, और उन्होंने देखा इनका जीवन कितना पवित्र है, वहाँ पे रोज़ सत्संग होता रहा, 2 मास में सेवा होती रही। और 2 मास के बाद ये लोग वापस चले गए, दीदी और कुछ बहनें, रुक्मिणी बहन शायद। तो और वहाँ पहुँचने के बाद फिर से लेटर भेजे गए कि आप हमारे पास ही रुको या भारत आ जाओ। तो दीदी ने कहा आप ऑफिशियल लेटर भेजो, तो वापस भेजा गया कि स्थानांतरण, ये पूरा यज्ञ ही भारत शिफ्ट किया जाए और हम लोग सारी देखभाल करेंगे, आपको जहाँ रहना है भारत में वहाँ रहो। तो इसलिए दीदी को फिर से भेजा गया 2nd time, एक लीलावती कोई बहन है उसके साथ, वो दोनों आए और 3 जगह पर ढूंढा कि कहाँ पर रिलोकेट करें, क्योंकि रहने वाले लोग कितने हैं, लगभग 300, परंतु इसमें पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग चले गए अब अपने लौकिक घर, तो वो 300 नहीं रहे, 300 350 भी कम हो चुके ऑलरेडी। तो दीदी ने 3 जगह सिलेक्ट की, एक मुंबई, एक पुणे, एक अहमदाबाद, यहाँ पर सब जगह ढूंढा। दीदी कहाँ ढूंढा, मुंबई में, पर मुंबई में कोई ऐसी जगह नहीं मिली, पुणे में ढूंढा, पुणे में भी इतनी बड़ी जगह नहीं मिली कि जहाँ सब लोग रह सके, इतने सारे एक जगह पर एक छत के नीचे। अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में भी ढूंढा, वहाँ पर भी नहीं मिले, परंतु वहाँ पर दीदी के जो लौकिक रिश्तेदार थे उनके गुरु थे, कौन, गंगेश्वरानंद जी, उनकी बुक्स भी है, गंगेश्वरानंद और सर्वनानंद जी। तो वहाँ वो रुके, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक नए आइडिया सजेस्ट किया कि आप माउंट आबू जाओ, वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं की कोठियाँ है, और उन्होंने अपने एक शिष्य सिद्धेश्वरानंद उनको साथ में भेजा इन लोगों के लिए कि आप इनके साथ जाओ। तो ये लोग माउंट आबू आए। तो ये सब हो रहा होगा जनवरी में, वो इन्विटेशन आया, 2 मास दीदी रुके, फरवरी मार्च के आसपास वापस गए, वापस आए, वापस सब जगह ढूंढा, माउंट आबू आए, माउंट आबू में सब जगह ढूंढा, पर यहाँ पर भी कुछ मिला नहीं कुछ। और फिर सोचा कि अब वापस चलते हैं, ड्राइवर भी परेशान, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, कौन सा ठीक है, क्या चाहिए आपको। और जाते जाते फिर ड्राइवर ने पूछा आप लोगों को चाहिए क्या, आप फिर वो बताओ, सुबह से घुमा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जिसमें इतने लोग रह सके। तो ड्राइवर ने कहा मुझे पता है एक जगह है, ब्रिज कोटी आबू रोड जाते समय लगता है, शमशान घाट के पेट्रोल पंप के आगे, शमशान घाट के पास। तो दीदी ने उसको देखा और देखते ही लगा कि यही वो स्थान है। तो फिर बाबा ने कही हुई 3 बातें याद आई। तो माउंट आबू आने का दूसरा कारण, पहला कारण तो इन्विटेशन, दूसरा कारण बाबा ने कभी कहा था कि एक दिन तुम पहाड़ों पर जाकर महाराजाओं के कोठियों में रहोगे तपस्या करते हुए। यह दूसरा कारण, एक दिन तुम कहाँ जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे और राजा महाराजाओं की जो कोठियां होगी वहां रहोगे, यह दूसरा कारण। तीसरा, बाबा ने कहा था कि तुम पहाड़ों पर जाओगे और पहाड़ों पर जाकर शरीर छोड़ोगे, पहाड़ों पर जाकर शरीर छोड़ोगे। तीसरा, चौथा, बाबा ने कहा था कि तुम पहाड़ों पर जाओगे और पहाड़ों से संसार का विनाश देखोगे। पहाड़ों का विनाश कहाँ से बैठकर देखोगे, पहाड़ों पर दुनिया का विनाश यहां से देखोगे। एक तो तुम्हारा भी, तुम भी यहीं शरीर छोड़ोगे तपस्या करते करते। चौथा, पांचवा, अगला कारण, शिव बाबा का आदेश संदेशियों के द्वारा कि अब तुम्हारा कराची रहने का समय समाप्त हुआ, अब कहाँ चलना है, भारत की ओर। यहाँ पर यहाँ के लोग इस ज्ञान को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसके लिए अब तुमको कहाँ चलना है, भारत की ओर। ये एक कारण, हिंदू मेजॉरिटी भी अब वहाँ है, वो भी एक कारण। अगला कारण, सबसे प्रमुख कारण, क्योंकि आदिदेव और आदिदेवी के संपूर्ण होने का स्थान आबू है। अगला एक कारण, आबू में ही यादगार है। कौन सी यादगार है, दिलवाड़ा की यादगार, तपस्या करते हुए योगियों की यादगार, अधर कुमार और अधर कुमारियों ने तपस्या की उसका यादगार अधर देवी, कुमारियों ने, कन्याओं ने जो तपस्या की उसका यादगार, अचल रहे परिस्थितियों में उसका यादगार अचलगढ़, गुरु शिखर जहाँ गुरु वशिष्ठ आए कभी, जहाँ अत्रि आए कभी उसका यादगार, जहाँ यज्ञ कुंड बना, उस यज्ञ कुंड से द फर्स्ट अग्निपुरुष कभी निकला था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसी कुछ अंग्रेजी बुक्स है जिसमें आबू की महिमा है। 1836 में विदेश का एक यात्री भारत आया और उसने आबू पर एक कविता लिखी, आबू उसमें लिखा हुआ है, ABOO। ये वही भारत अर्बुदाचल जिसका शास्त्रों में, महाभारत में इस आबू का वर्णन है। अर्बुदाचल जो नंदी था शिव का, उसकी रक्षा अर्बुदा उसने की थी। एक सांप था अर्बुदा नाम का, उसने उस नंदी, किसका नंदी, शिव का, उस पे नाम पड़ा अर्बुदाचल। फिर बाद में समयांतर में वो अर्बुदाचल का आबू हो गया। तो एक कारण तो यही भी था कि आबू में ही वो सारे यादगार बने हुए, अंबाजी का यादगार, गौमुख का यादगार, दिलवाड़ा का यादगार, ये सारे यादगार, और आबू तपस्वियों की भूमि है आबू। और एक कारण, एकांत और मौन है यहाँ पर, यहाँ की हवाओं में फ्रेशनेस है, शहर की हवाओं जैसी नहीं है। आबादी उस समय तो बहुत ही कम है, पूरा जंगल ही था आबू उस समय, ये निर्णय लिया गया। और कारण, ये तो इतने कारण हैं, और कारण यही सेवाओं का केंद्र बनने वाला है भविष्य में। ये और एक कारण, आप सब लोग कहाँ आने वाले थे, आप हम सब यहाँ आने वाले थे, इसलिए उनको यहीं आना था, यही वो जगह थी जहाँ दादियों को तपस्या करनी थी, यही वो जगह थी जहाँ पर ब्रह्मा ने और मम्मा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और देह त्याग किया, यही वो जगह थी जहां पर परमात्मा अवतरण होने वाला था, यही वो जगह थी जहां पर विश्व की सेवा का शुभारंभ जहां से होने वाला था, यही वो जगह थी जहां डायमंड हॉल बनने वाला था, इन्हीं पर्वतों के बीच तपस्या होने वाली थी यही वो जगह थी जहां ज्ञान और योग की चर्चाएं होने वाली थी। आबू शिव अवतरण भूमि है, शिव दर्शन है, यही अब्बा का घर है, यही अब्बा का घर है, तो इसलिए यहाँ आना ही था। तो इतने सारे कारण थे, तो डिसीजन ले लिया गया कि अभी तो फिर से कहानी की ओर आते हैं। तो जैसे वो ब्रिज कोटी देखा तो दीदी को लगा यही वो स्थान है, यही वो स्थान है। और दूसरा सबसे मेन कारण, कल पहले यहीं आए थे तो कहाँ और जाएंगे, इसके लिए यहीं आना है, हिमालय पर नहीं जाना है, साउथ में किसी पर्वत पर नहीं जाना है, मॉरिशस में नहीं जाना है, ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, ना इंग्लैंड ना अमेरिका, अच्छे अच्छे स्थान होंगे संसार में आबू से भी ज़्यादा अच्छे, ना नैनीताल जाना है, ना उत्तराखंड जाना है, ना देहरादून आबू आना है, ना कश्मीर जाना है, यहाँ आना है। घर फिर दोस्त भर रूए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यही वह स्थान है, यही आना था। तो सबसे मुख्य कारण तो ये है कल पहले का। तो फिर दीदी अहमदाबाद वापस आए और अहमदाबाद से बाबा को फ़ोन लगाया कि बाबा माउंट आबू में ऐसा एक स्थान देखा है, ब्रिज कोठी, राजा ब्रिजेंद्र की वो कोठी थी, भरतपुर के महाराजा, यहाँ पर जयपुर पैलेस है। क्योंकि माउंट आबू क्या था पहले? हिल स्टेशन। माउंट आबू के इतिहास को अगर देखो तो कहाँ कहाँ से किसके किसके हाथ में गया है, 12वीं शताब्दी में किसके हाथ में था, कभी गुर्जर थे, परमार थे, कहाँ कहाँ किसके किसके हाथों से माउंट आबू था, फिर उसके बाद में सिरोही उसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई वगैरह वगैरह, वो एक दूसरा इतिहास है, हम आगे देखते रहेंगे उसको। परंतु तो बाबा को जैसे फ़ोन करके बताया तो बाबा ने तुरंत हाँ कर दिया, जैसे माइंड में पहले से ही था माउंट, तुरंत था, बिना कुछ कहे बिल्कुल फाइनल कर दिया। और फिर दीदी वहीं रहे। और फिर पर ऑफिशियल काम के लिए किसको भेजा जाएगा? भाऊ, जो हमने उस दिन परसों देखा कि भाऊ को वापस भेजा पूरा प्लानिंग करने के लिए। कैसे आए अब? दीदी तो आ गई थी फ्लाइट से, पर ये सब लोग कैसे आएंगे अब? तो वो उसका सारा प्लानिंग के लिए, और दूसरा ये जो ब्रिज कोठी है इसको लेना है तो उसका की उसकी रेंट, उसका रेंट कितना होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ देखने के लिए किसको भेजा? भाऊ को भेजा। तो प्लानिंग क्या बनी? कराची पोर्ट, कराची का बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, कराची पोर्ट से पहुंचेंगे बाय शिप, बाय स्टीमर, स्टीमर का नाम था सरस्वती। कब निकले? अप्रैल में, अप्रैल एंड में शायद, ताकि 5 तारीख तक यहाँ पहुंचे, क्योंकि एक जो तस्वीर है उसमें अप्रैल का डेट डाली हुई है स्टीमर की। तो कराची पोर्ट से कहाँ आएंगे? ओखा बंदर। ओखा कहाँ पर है? गुजरात। ओखा से बाय ट्रेन महसाना, ट्रेन चेंज, महसाना से आबू रोड, आबू रोड से बस। ये है पूरा प्लानिंग, ऐसा आना है। पर ये आने के लिए 15 दिन की तैयारी लगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर, बस, साइकिल। तो बाबा ने कहा ये सब को बेच दो, आधा फर्नीचर बेच दिया गया, पर बेचने से पहले पॉलिश करो अच्छे से उसको, ताकि अच्छी कीमत मिले। प्लानिंग बुद्धि ऐसे नहीं बेचना, यह क्योंकि हर चीज़ हमें कुछ सिखाती है, अगर कुछ चीज़ें बेचनी है तो पॉलिश करो, और यदि यज्ञ में कोई चीज़ दान देनी है तो अच्छी कंडीशन में देना है, नहीं तो लोग यहाँ कुछ कुछ दान दे के आते, उनके घर का पुराना आप लोग यूज़ करो जो हमारे भी कुछ काम का नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें दे जाते हैं कि जो कोई काम की नहीं है, जो चलती नहीं है। तो अगर यज्ञ में कुछ दान भी देना है तो क्वालिटी अच्छी हो उसकी, अगर पुरानी चीज़ है आपकी तो उसको रिपेयर करो फिर दो। कोई गाड़ी देनी है तो उसकी अच्छी सी रिपेयरिंग सर्विसिंग करके फिर दान दे दो कि अब तुम लोग चलाओ, यूज़ करो। तो ये कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा ने क्या किया, सारे फर्नीचर थे उनको क्या कहा, आधे, हाफ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। और चंद्रराज दादा कहते हैं बहुत खर्चा हुआ ये पूरे शिफ्टिंग में, तो आधा तो भेज दिया। फिर बसें थी, साइकिल थी, कार थी, सब भेज दिया। एक बस और एक कार लेके आए, वो भी आबू आने के बाद भेज दी फिर, क्योंकि आबू आते ही बेगरी पार्ट चालू, क्योंकि सारे पैसे अब तक के ख़त्म। कितना एसेट्स था बाबा का? 10 लाख लगभग। और कब था ये? जब बिजनेस वाइंड अप कर दिया था तब। और बीच में कितना समय बीत गया? 12-13 साल बीत गया, तो उसमें तो वो खत्म। और एक कारण, पांडव कितना समय अज्ञातवास में रहे? 1 साल अज्ञातवास, 12 साल वनवास। तो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, 13 साल। 13 साल वैसे भी पूरे हो गए, 13 साल के बाद में युद्ध में प्रवेश, तो अभी युद्ध स्थान पर आ रहे। एक और कारण है आबू आने का, नई परीक्षाओं का सामना करना है, नई परीक्षा है। अभी तपस्या बहुत कर ली, अभी नई परीक्षा आएगी, भोजन की, पानी की, प्रकृति की और जानवरों की। तो ये प्लानिंग बना, आधा चीज़ें भेज दी और सब लेके कहाँ पहुँचे, 15 दिन लगे इस तैयारी को, क्योंकि इतना सारा सामान था। और उस समय कराची का कुछ चित्र है, उसमें कैमल अर्थात ऊंट पर सामान लोड किया गया। दिस इज कराची 1940s। कहाँ तक पहुँचाने के लिए? कराची पोर्ट तक, कराची बंदरगाह, क्योंकि वहाँ से स्टीमर है। और ये जो बहुत सारे चित्र है, ये देखो, एक ही ऊंट में कितना सारा सामान, ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट कहते हैं इसको। तो उन कैमल्स के द्वारा वो वहाँ तक पहुँचाया गया। और बहुत सारे लोग आए कि जिन्होंने कहा कि आप यहीं रहो, गुलाम हुसैन लॉ मिनिस्टर, अल्लाह बख्श, क्योंकि अल्लाह बख्श की सरकार उस समय चल रही थी, जो कि ट्रिब्यूनल के भी मेंबर थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस समय के, अल्लाह बख्श और एक दूसरे कोई डॉक्टर गिडवानी थे, वो भी आए। सब ने बहुत कन्विंस किया आप यहीं रुको, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। पर बाबा ने कहा हमें ईश्वरीय आदेश मिल चुका है, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो जब जीवन में ईश्वरीय आदेश आ जाए तो फिर रुकना नहीं होता है। इसको कहते हैं द डिवाइन कॉल। लोग पूछते हैं मधुबन में आके रहे, हम सेंटर चले जाए, हम यहाँ समर्पित हो जाए, वहाँ हो जाए, जब तक पूछ रहे हो मतलब अभी तक डिवाइन कॉल नहीं आया है। जब डिवाइन कॉल आ जाए तो फिर किसी से पूछना नहीं होता है। पूछूं आऊं क्या मधुबन, आ जाओ, मतलब सब ठीक तो है ना, बीमार पड़ गया तो दवाई ववाई सब मिल जाएगी ना, सेंटर पे आ जाओ, नौकरी छोड़ दूं, सब दे दूं, यहाँ आगे क्या होगा फिर अगर वापस जाए। बैकअप प्लान भी रखते हैं, थोड़ा सा बैकअप प्लान, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। सरेंडर मीन्स नो बैकअप, सरेंडर अर्थात छलांग, अज्ञात में, असुरक्षा में, कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला। इनको पता था कहाँ जा रहे, इनको पता था क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता था। और दीदी को थोड़ा डर भी था कि बाबा ने केवल मेरे एक डिसीजन पर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझ पर विश्वास किया, और पता नहीं यहाँ कैसे क्या होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है, फ्यूचर अननोन है। ये है समर्पण। कोई बैकअप प्लान है? इनको पता है यहाँ आने के बाद में जिन्होंने बुलाया वो लोग मुकर जाने वाले, तब कहाँ जाए, वापस कुछ सामान वहीं रखते, कराची में जितनी 8 बंगले थे वो भी सब बेच दिए, सब कुछ निपटारा कर दिया, हर चीज़ का कुछ भी नहीं छोड़ा। और महत्वपूर्ण बात, जितने तुमने नोट्स बनाए हैं अब तक, जो कुछ लिखा है वानियाँ, वो सब क्या जला दो। सबने क्या, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जलाएंगे हमारी ये। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा एक काम करो, फिर दफन कर दो, द्वापर में निकलेंगे। हाँ ये ठीक है। और एक साकार मुरली है जिसमें बाबा देखो क्या कह रहे हैं, वह गीताएं तो ढेर है फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी, तुम्हारे कागज थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में, ऊंचते ऊंच गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, इस सूर्य की महिमा नहीं है, ये भी कह दिया एक मुरली, फिर भी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज थोड़ी ना निकलेंगे। साकार मुरली, इधर भी उधर भी उधर भी। आप भी पढ़े होंगे, कोई जाए और एक्सप्लोर करे, पर वो भी किया है विदेशियों ने, वो विदेशी सारे गए हैं एक एक जगह देखने, पर अभी कराची का ये एरिया एम्बेसी बन गया है, इट्स अ मोस्ट पॉश एंड वीआईपी एरिया, उसमें एंट्री नहीं है, मोस्ट पॉश। अरे जब संसार के वीवीआईपी जहां रहे उसको तो वीवीआईपी बनना ही है, ऐसे ही थोड़ी ना, सारे एक एक जगह बाबा भवन विजिटेड एक्सप्लोर्ड, फिर जो बेबी भवन, बॉयज भवन, किंग्स भवन, ये जितने एक एक थे वहाँ के, दीदी का अपना एक वो जो सिलाई का सेंटर, ये 8 भवन एक एक एक्सप्लोर किया, किसी में जाने ही नहीं दिया। सिक्योरिटी ने कहा, सिक्योरिटी को पूछा गया, विदेशी गए वहाँ पर, कि वहाँ क्या होता था, तो वो कहता था कई साल पहले यहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी लोग आके पूजा पाठ करते थे, मतलब तपस्या करते थे, उसको तो पता नहीं क्या करते थे वहाँ अभी जो लोग हैं, तो उनको भी नहीं पता वहाँ क्या था, क्योंकि ये सब कुछ समट किया आ गए। तो फर्स्ट बर्निंग ऑफ सब डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल, दो बार ऐसा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ ज्ञान पूरा स्पष्ट नहीं था, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पहला बर्निंग कब हुआ, बर्निंग कहो या उसको ख़त्म कर दिया सब, बाबा ने यहाँ का अभी कोई भी लिटरेचर साथ में रहेगा, कुछ पोस्टर्स रहेंगे जो साथ में लेके जाना है, उस पोस्टर्स में भी चेंज होते गया, 49 का पोस्टर, 50 का पोस्टर, और 50 के बाद के पोस्टर्स थोड़े थोड़े अलग है। जो हिस्ट्री हॉल में पोस्टर लगा हुआ है उसमें जो पहला पोस्टर बना उसमें तो रूजवेल्ट था रशिया का, अमेरिका का, फिर वो चला गया 45 के बाद में प्रेसिडेंट चेंज, हैरी ट्रूमैन आया, तो वो जो चित्र है ना दो बिल्ले, एक स्टालिन है एक हैरी ट्रूमैन है, उसके पहले वहां पर एक रूजवेल्ट था, उसके बाद में जब भारत में आए तो प्रेसिडेंट वहां का चेंज होगा, वो आइजनहोवर हो गया फिर, और यहाँ का वो क्या रशिया का एक नाम है क्लेश समथिंग, वो स्टालिन भी बदल गया, तो प्रेसिडेंट बदल के गए, हमारे चित्र के जो प्रेसिडेंट है जो दो बिल्ले वो भी चेंज हो गए होते गए। यहाँ तक अभी तक ज्ञान स्पष्ट नहीं है, यहाँ तक अभी तो ब्रह्मा ही गॉड है, ब्रह्मा ही कृष्ण है, ब्रह्मा में ही सबको कृष्ण दिखता है 50s तक, फिर धीरे 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 कि प्यू के द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि ये अलग है ये अलग है, ये दोनों एक नहीं है, कोई एक दूसरी शक्ति प्रवेश कर रही है, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट होता गया। तो ये सब तो सेकंड बर्निंग हुआ 64-65 के आसपास जब बाबा ने कहा, तो ऑफिशियल मुरलिया जो वास्तव में है वो 65 से लेके तो 69 तक जो हम सुनते हैं रोज, उसके पहले का यहाँ पर भी बाबा ने कहा ये सब खत्म कर दो, यहाँ आने के बाद का भी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है उससे, लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, पर अभी हम बहुत समय आगे निकल चुके हैं और विश्व में प्रत्यक्षता अभी होने ही वाली है, तो अभी कहा जा सकता है, नहीं तो कहीं पर इसका वर्णन लिटरेचर में कहीं कुछ नहीं है। तो 15 दिन तैयारी में लगे, आधा बेच दिया आधा रखा, और ये ऊंट पर लाद कर सब कहाँ पहुँचे, कराची, और वहाँ पर कौन लोग थे, पठान लोग, वहाँ कौन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बहुत मदद की, एक चित्र है उसमें ये सब पठान लोग भी दिखाए हैं वहाँ पर, ये सब चित्र आपने देखे होंगे, पर कुछ कुछ चित्र ऐसे हैं कि हाँ ये एक चित्र ऐसा है दिखाई दे रहा है, इसमें ये सब पठान लोग हैं वहाँ पर जो मदद कर रहे हैं सामान चढ़ाने में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो ये सब बातें कब की है, अप्रैल की, आबू कब पहुँचना है, डेट क्या है आबू की, 5 मई 19, तो ये अप्रैल की बात है कि ये वहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से ओखा बंदर, और ये जो यात्रा थी, अब ये कितना समय की यात्रा थी पता नहीं, पर वो जो क्योंकि जो शिप सी से इससे आए हैं ना ये लोग, तो सी का डिस्टेंस जो होता है NM में मेज़र किया जाता है, लैंड का डिस्टेंस KM में मेज़र, किलोमीटर में, ये 190 नॉटिकल माइल्स, कहीं दूसरी जगह लिखा है 1202 या 749 माइल्स, इसको लगता है एक दिन दो मिनट ट्रैवल का टाइम लिखा हुआ है इसमें, पर मुझे ये पता नहीं अभी, ये अगर उस समय कोई दादी या कुछ वो बता सकते हैं, पर कहीं कोई लिटरेचर में भी नहीं है कि टाइम कितना लगा, पर एक बात है कि ये जो चित्र है बाबा के पोर्ट के शिप के चित्र जिसमें बाबा बैठे हुए हैं, ये सब दादियाँ बैठी हुई है, ये बहुत सारे चित्र है इस तरह के, ये शिप के अंदर के स्टीमर के अंदर के चित्र है, ये वाला, तो ये सारे जो चित्र है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं स्टीमर में और वो निकल पड़ रहे, वहाँ पर भी ज्ञान चिंतन चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, और सब कहाँ पहुँचे फिर, ओखा, यहाँ से ट्रेन ली, इसमें दो वर्शंस है, ज़्यादा चंद्रहास का कहना है कि 2-3 बूगी ले ली, परंतु निर्मल शांता दादी के वर्शन में है कि पूरी ट्रेन ही बुक कर ली गई, इतने सारे लोग थे, एक स्पेशल ट्रेन बुक कर ली गई, और हम ही राजा थे उसमें, जब चाहो तब चेन खींचो, तो गार्ड आता था, क्या हुआ क्यों खींची, वो कहते हमको खाना खाना है, और कहाँ खाओगे ये जंगल है, वो कहते हमारे पास भोजन का सब सामग्री है, तो उनको भी खिला देते उतर के रुक रुक के, और उनको भी खिला देते गार्ड और रेलवे ऑफिशियल को, और ये करते करते मेहसाना से ट्रेन चेंज आबू रोड से बस से ऊपर, और कहाँ पहुँचे, ब्रिज कोठी, राजा बिजरिंद, सबने देखी है ब्रिज कोठी, देखिए नहीं देखी, एक बार देखना चाहिए, अभी तो होटल है सनराइज होटल, 3-स्टार होटल, एक दिन का भाड़ा है 5,000 प्लस टैक्स कमरों का 5,000 प्लस टैक्स एक दिन का, चाहे तो एक दिन जाके रह सकते हो रात भर, सही में रह सकते हो अनुभव करने के लिए कि यहाँ पर वो सारे लोग आए और यहीं रहे इस कोठी में, इतनी बड़ी कोठी, वो इतनी बड़ी कोठी है कि वहाँ पर, और एक बात, बाबा को जब बुलाया और उसके बाद में दीदी ने देखा वहाँ एक सांप है बड़ा बड़ा, तो ये जब यहाँ पहुँचे ओखा में तो बाबा के पास दीदी घबराई हुई सी गई कि बाबा आप लोग आ तो गए पर पता है वहाँ आपको सांप है वहाँ तो बड़े बड़े, क्योंकि उस समय आबू जंगल है, कितनी पॉपुलेशन होगी पता नहीं, बहुत कम, सारा जंगली जंगल जानवर है सब जगह, तो बाबा ने कहा हम तो काम क्रोध ये बड़े बड़े सांपों को झेलने वाले, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तब दीदी को थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि उसके भरोसे पर सब आ गए इतने सारे लोग, कहीं मेरा रॉन्ग तो डिसीजन नहीं हो गया। डिसीजन पावर, दिव्य बुद्धि होगी तो राइट डिसीजन होगा। संडे की मुरली किसके बारे में? डिसीजन स्वयं के बारे में, सेवा के बारे में, ब्राह्मण परिवार के बारे में। ये डिसीजन तुमको लेना होगा, ये तब राइट होगा। यथार्थ निर्णय, सफलता होगी कब? जब दिव्य बुद्धि होगी तब। दिव्य बुद्धि वरदान है, दिव्य बुद्धि जन्मसिद्ध अधिकार है, दिव्य बुद्धि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, दिव्य बुद्धि जीवन परिवर्तन मर्जीवा जन्म का फाउंडेशन है। दिव्य बुद्धि से यथार्थ निर्णय, दिव्य बुद्धि से यथार्थ जानना, दिव्य बुद्धि से यथार्थ परखना। तुम विद्या देवी विद्यापति सरस्वती हो, दिव्य बुद्धि वाहन है जो तुम्हें तीनों लोकों की सैर कराता है। दिव्य बुद्धि बुद्धि बल है, वो है साइंस बल, ये है बुद्धि बल। दिव्य बुद्धि से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, दिव्य बुद्धि से परमात्मा मिलन, परमात्मा परिचय और परमात्मा प्राप्ति होती है, दिव्य बुद्धि से सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है, परमात्मा प्रेम का अनुभव होता है, दिव्य बुद्धि से संभव असंभव होता है, और दिव्य बुद्धि से माया असंभव संभव होता है और माया पराजित होती है। 14 बातें हैं लास्ट संडे की मुरली, दिव्य बुद्धि। तो जहां दिव्य बुद्धि होगा निर्णय यथार्थ होगा। दावाने का कुछ नहीं, तब ठीक लगा, ठीक है चलो। तो फिर वो लोग आ गए ब्रिज कोठी। ब्रिज कोठी बहुत बड़ी जगह है, अभी वहाँ पे 3-स्टार होटल है जैसे बताया, और वहाँ से पूरा आबू दिखाई देता है, वहाँ से पूरा आबू दिखा। और उसी के बाजू में क्या है? शमशान घाट। और दूसरी बात, वहाँ पर जानवर, और कई समय से यहाँ कोई नहीं रहा था, तो लोगों का मानना था यहाँ पर भूत। शमशान घाट बाजू में ही है, एक ही तो शमशान घाट है आबू में, वो उसी के बाजू में पेट्रोल पंप के आगे, और ये वहाँ। तो यहाँ पर भूत नाचते हैं खिड़कियों के बाहर रात को। तो यहाँ भूत है, यहाँ सांप है, और यहाँ पर कोई नहीं रहा है, खाली रहा है ये बंगला, भूत बंगला खंडहर जैसा है। तो ये सारे लोग, कितने लोग, और यहाँ आने के बाद में भी यहाँ से बहुत सारे चले गए फिर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग परीक्षाएँ आई, बहुत सारी परीक्षाएँ, हेल्थ, किसी को हेल्थ इशू, यहाँ का पानी भारी, यहाँ का भोजन पैसे ख़त्म, यहाँ पे ये परिस्थिति है, इतनी ठंडी, वो कहाँ क्लिफ्टन, वो कहाँ कराची, और ये कौन सी जगह आ गए, और ये जानवर सांप भालू और भूत प्रेत अलग, और शमशान घाट बाजू में, और सन्नाटा और जंगल, और आबादी इतनी कम। 16 कमरे थे, अभी भी है वो, ऊपर 7 फर्स्ट फ्लोर 9 और नीचे 16 या 17 कमरे हैं वहाँ पर। तो मम्मा का कमरा, बाबा का कमरा, मम्मा का कमरा नंबर 202, मम्मा का कमरा नंबर, बाबा का कमरा 204, आमने सामने नहीं बाजू में। उसका 10,000 है किराया। अभी तो पूरा अलग सब कुछ बदल दिया वो लोगों ने, इतना सोफिस्टिकेटेड कर दिया उसको, एक बार सभी जाके देख सकते हैं। ब्रिज कोठी क्या, सनराइज पैलेस, सनराइज, एक साथ मत जाना। एक साथ जाएंगे भी नहीं, वो लकड़ी की सीढ़ियाँ अभी तक भी है, उस पे से चलो तो आवाज़ आता है खट 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 खट। वो पेड़ भी है वहाँ पर, मुरली पढ़ते थे, वो सब है वहाँ पे। वहाँ पे भाई है चेतन भाई, हाँ चेतन भाई, वो जाओ तो वो पूरा बताएगा डिटेल में, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ है। वो इन हाउस डाइनिंग अभी भी है, अभी तो हर चीज़ बदल दी, पॉश कर दिया उसको, पर कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने अभी तक वैसा ही रखा। तो 4 साल तक ये लोग वहाँ रहे, 50 से 1954 तक, पर भाड़ा बहुत था, किराया बहुत था, किराए पैसे ख़त्म हो रहे थे, अभी चालू हो गया है पेकरी पार्ट, इसलिए तो चंद्रराज दादा ने लिखा है कि यहाँ पर फिर लगभग 200 ही बच गए बस, हाँ ये सब फिल्टर होते गए, क्योंकि इतनी असुविधा है, पैसे नहीं, क्या करेंगे। तो दूसरी बात, क्लैरिफिकेशन ज्ञान का, 49 से ही ये क्लैरिफिकेशन चालू हो गया था, थोड़ा 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 स्पष्ट होना चालू हो गया, पर 52 से 58 शिव बाबा इज स्टिल थॉट ऑफ एज ए थम्ब शेप्ड, थम्ब शेप्ड अर्थात अंगुष्ठाकार। बाय द एंड ऑफ 1950 द एप्रिसिएशन एप्रीहेंशन ऑफ शिव बाबा एज पॉइंट ऑफ लाइट बिकम क्लियर। यहाँ तक 50s में ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। Therefore, the knowledge of the soul as a point of light is also clear. In posters drawn from 1950s, a distinct difference is that infinite divine light is replaced by the presence of incorporeal God Shiva. अभी तक के जो चित्र थे उसमें क्या था? Infinite divine light लिखते थे। परम ज्योति शब्द बाद में आया, 50s के बाद, 50, 52, 58 के बीच में। तो फिर धीरे धीरे 52 के बाद में ये क्लियर हुआ, विष्णु शंकर कृष्णा ये सब क्लियर होते गया, ब्रह्मा शिव बाबा डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज है ये क्लियर होते गया। और फिर सेवा धीरे 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 धीरे, जो प्रजापति नाम था लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड वो प्रजापिता हो गया, धीरे धीरे स्पष्ट होके क्लियर क्लियर होते गया। क्लैरिफिकेशन मन बुद्धि संस्कार 56-57 के बीच में क्लैरिफाई हुआ, ये 57-60 के बीच में और बातें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये सब थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई होते गया। और 60s में फिर ऑफिशियल नेम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो हमने देखा जो कराची में थे तब भी नाम बदल, उन्होंने कहा था सरकार ने कि ये ओम मंडली के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है इसका नाम बदलो, अल्लाह बख्श सरकार ने कहा, तो वहां पर ही प्रजापति था पर वो हर जगह, फिर धीरे धीरे उसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की कन्याएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो फिर 65 ये आगे की बातें हम बाद में और देखेंगे। तो कहने का भाव, बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत कुछ सहन किया, धीरे धीरे स्पष्टीकरण होता गया, एक दिन में ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ। और ये सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं, कितनी बातें अस्पष्ट है अभी, आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, पर फिर भी निश्चय है कि यही सत्य ज्ञान है और हमें विश्व का कल्याण करना है, ये भाव है अंदर, इस भावना से ये लोग यहाँ आए हैं, जो हमारे पास है अब सबको देना है। तो 1950s में 5-5-50 में कहाँ पहुँचे, आबू में आ गए, 4 साल तक यहाँ रहे, यहाँ 4 साल के बाद जब किराया बहुत ज़्यादा था को केस कर दिया और फिर भाऊ ने हैंडल किया, पर परंतु बाद में दूसरी जगह ले ली, कोटा हाउस ढोलपुर हाउस, वहाँ पे भी कुछ साल रहे और फिर 1958 या 60 के बीच कहाँ आ गए, पोखरण हाउस जो कि वर्तमान समय पांडव भवन है जहाँ हम लोग अभी है। हाँ, ये भी बंगला गंगेश्वरानंद जी का, उसको हम कल देखेंगे और डिटेल्स में इसकी बातें, क्योंकि आबू की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो ये तो केवल यात्रा थी और यात्रा में भी बहुत सारी असुविधाएं हुई, परंतु बढ़ते 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 आगे चलते रहे ये कारवा। क्या क्या सीखेंगे इससे, लर्निंग पॉइंट्स, चेंज के लिए रेडी रहो, चेंज के लिए रेडी, भागना मत बस, एक दूसरा और क्या सीखेंगे, डिवाइन कॉल आए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डिवाइन कॉल आने के लिए क्या करना पड़ता है, इंतजार, रुको, शांति से बैठे रहो, बाबा टच कराएगा किस समय क्या करना है, सब कुछ तुम ही मत करते बैठो, बाबा से बातें करते उसको बोलने का चांस ही नहीं देते, नॉन स्टॉप अपनी कमेंट्री चालू करते, ये करो ये करो वो करो वो करो, बाबा तुम ऐसे करो ऐसे करो, ये नहीं करो वो करो, अच्छा मैं वहां जाता हूँ, खुद ही उत्तर दे, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, अच्छा मैं जाता हूँ फिर नहीं जाता हूँ, तो उसको भी टाइम दो थोड़ा, दे ऑल्सो विन हु ओनली वेट एंड वॉच, शांत बैठे रहो। तो तैयारी रखनी है, और क्या सीखेंगे पूरी यात्रा से, फिल्ट्रेशन होते रहेगा, तो उनको जो जा रहे उनको देखकर खुद भी नहीं भाग जाना, अरे इतने कुमार चले गए, हम लोग 10 कुमार थे, 2 ही बचे, वो 8 कहाँ चले गए, उन 8ों की चर्चा करते और वो 8 कहते हम लोग बहुत खुश है, फिर तो और ही हिम्मत थोड़ी डगमगाती है, बोलते अब देखो हम लोग सब कर रहे, वो भी करते हैं वो भी करते हैं दोनों करते हैं, हमारे बच्चे वो भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं, देखो हमने कितना उनका पार्ट खोल दिया ना, एडवांस पार्टी की आत्माएं आ गई, इतनी सी बच्ची है मेरी, वो कसंडली पर बैठ के मुरली सुनाती है और तुम बैठे वहां कुमार जीवन, ना खुद का कल्याण ना दूसरों का, टेम्पटेशंस प्रलोभन, और क्या सीखेंगे, स्थान बदलेगा, हाँ, और जो जैसे कृष्ण का दिखाया, जैसे गोकुल छोड़ा, बाद में कोई वर्णन ही नहीं है कृष्ण के चरित्र में, कोई लेना देना नहीं, ना बांसुरी कभी बजाए, सांदीपानी के आश्रम में सुदामा कहता है मुझे बंसी, मैंने सुना है तुम बंसी बजाते हो, वो कहता है पार्ट पूरा हुआ, कभी बंसी उठाई नहीं, जो हो गया उधर का खत्म, नया पार्ट, नए युग का करे स्वागत, सीखे हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, और क्या सीखेंगे, सामान कम होगा तो यात्रा बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छा है, जितना कम सामान उतनी यात्रा अच्छी, और यात्रा में एक नियम तो बहुत ही अच्छा है, निर्जल उपवास, आज जाना है 24 घंटे की यात्रा है, अब जो खाना है पीना है पी लो, यात्रा में ना खाना ना पीना, वहीं पहुंचना, नहीं तो यात्रा में जाते हैं वो सामान ही खाने पीने का ही तो ज़्यादा रहता है, इसमें चटनी उसमें वो, अरे वो नहीं भी लिया तो बीच बीच में सेंटर लगते हैं उनको फ़ोन करके बताओ यहाँ पहुँचो पूरा लेके, वो पहले ही बिजी, चाय का थर्मस सब होना चाहिए, और वो भी कम दिया तो उस पर थोड़ी चर्चा कम मिला थोड़ा। बेस्ट है यात्रा में नो भोजन, कुछ न खाना न पीना, उपवास हो जाएगा, न्यूनेस उपवास, कोई झंझट ही नहीं कहीं, कुछ नहीं। अगर लेना ही है आप नहीं रह सकते तो फ्रूट्स नहीं ले सकते, जूस नहीं ले सकते, अंकुरित मूंग, बस कुछ नहीं खाने का पीने का। और यात्रा में खाने के बाद ही तो कितनी पेट खराब कुछ 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 होता है लोगों को, और पानी वहाँ का पी लेते हैं, वॉशरूम और ये और वो, सब झंझट खत्म और सामान कम। तो यात्रा करनी है तो सामान कम ही चाहिए। और क्या सीखेंगे इससे? बेचने पहले अच्छे से पॉलिश करके अच्छे कंडीशन में देना है यज्ञ को चीज़ें, ऐसे नहीं कि उठा के अपने घर की पूरी होगी। यहाँ पर एक दो कुछ लोग आए थे, बोला ये आप यज्ञ के लिए रख लो, देखा तो लाइट खराब, वो सब कुछ ही खराब था उसका, तो घर का जो पुराना इधर ला के दे दिया। तो देना है तो अच्छी कंडीशन में देना। और क्या सीखेंगे? डू और डाई। और क्या सीखेंगे? परिस्थितियाँ कैसी भी आए, कुछ भी आए, एक बार निर्णय ले लिया पीछे नहीं हटना है फिर, बस। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, भीष्म प्रतिज्ञा, बस एक ही बार प्रतिज्ञा, अब जो होगा वो हो गया, पवित्रता के मार्ग पे आगे बढ़ गए, जो होगा होगा, अब पीछे नहीं हटेंगे। वो ऑप्शन बी खत्म हो चुका है हमारे लिए, वो संसार, वो गृहस्थी, वो लौकिक, सब कैंसल। जब जो होगा अब यहाँ होगा, ऑप्शन ए इज एवरीथिंग। शरीर छोड़ने आए, जो होगा अच्छा, अभी तक जो हुआ बहुत अच्छा, अभी जो होगा वो तो बहुत अच्छा, और जितने चैलेंजेस है उतना अच्छा है। जीवन अर्थात चैलेंजेस, चुनौतियाँ, उसी से आत्मा आगे बढ़ती है, मजबूत बनती है। तो जननी जन्मभूमि भारत आ चुके हैं, अब भारत की यात्रा आगे जारी रखेंगे। ओम शांति।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है,
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है,
इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है,
इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है,
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।
शाम है
पद्मों के रुधिर से भूमि सस्य शाम है,
धर्म का यह धाम है सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।
खड़े
इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े,
शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।
यमुना झूमती,
इसके गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती,
इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती,
इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती।
भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, इसके जय पताक पे लिखा विजय निशान है।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि